ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। इसके 123 नंबर पृष्ठ पर तीसरे सकंद में, ये तीसरा सकंद है, 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर शिवजी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए, कौन कौन से? नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा, ये दुर्गा यानी शेरा वाली माता इनकी मां है, इनकी जननी है। नंबर तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। चौथा ये हो गया कि केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, किसी के भी सुख या दुख को ये घटा बढ़ा नहीं सकते, ये अनुग्रह नहीं कर सकते किसी पर। तो पुण्यात्मा ये प्रसंग चल रहा है कि हम यदि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करें तो भी हमें वो परम शांति नहीं मिल सकती। परम शांति उसी को कहते हैं जहां जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर ना आना पड़े। इस गंदे लोक में यहां किसी को देख ले कोई सुखी नहीं, चाहे इस पूरी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना। इस पृथ्वी पर कहीं फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप से मृत्यु हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बर्फ के नीचे दबकर मर जाते हैं, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी रोग से, कोई टेंशन से, कोई आपसी झगड़े में, कभी किसी चीज का अभाव है तो कभी किसी चीज की टेंशन है, या कभी जीव सुखी नहीं होता। और स्वर्ग के अंदर इससे भी ज्यादा दुख है। हम स्वर्ग बहुत बार जा चुके हैं और वहां हम रह भी नहीं सके। हम मान लीजिए उसको सुख मानते भी हैं तो हम वहां रह नहीं सकते, क्योंकि जितनी जिसकी पुण्य कमाई होती है उसको समाप्त करके वहां से फिर लौटना पड़ता है। यदि हम ब्रह्म की साधना करते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है, और इसकी साधना करके हम केवल ब्रह्म लोक में जाते हैं, और ब्रह्म लोक में जाने के बाद फिर भी लौटना पड़ता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में उसमें लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ति में है। पुनरावर्ति का अर्थ होता है कि जहां जाने के बाद फिर वापस लौटकर आना ही पड़ता है, वो पुनक्षीण होने के उपरांत। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का अनुवाद गलत किया इन्होंने। इसका अनुवाद किया है कि लेकिन ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ति में हैं, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। गलत अनुवाद किया। इसका अर्थ यह है कि न विद्यते का अर्थ होता है जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना होता है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्वर्ती में जन्म मृत्यु होती है, तो वो ये सब कुछ जानकर भी दोबारा पुनर्वर्ती में रहते हैं, जन्मते मरते हैं। यदि यहां ये सत्य माने कि इनका अनुवाद ठीक है, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करने वाले मुझे प्राप्त प्राणी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, उनके जन्म मरण नहीं होते, ये जचे नहीं। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्वयं कह रहा है कि तेरे मेरे ना जाने कितने जन्म हो लिए, पहले भी हुए आगे भी होंगे। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं और आगे भी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ब्रह्म को प्राप्त प्राणी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये स्वयं कहता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा, रत धाम को प्राप्त होगा। अब वो परमात्मा जैसे सुबह के सत्संग में आपको बताया था, तीन परमात्मा हैं, एक क्षर पुरुष जिसको क्षरब्रह्म भी बोलते हैं, क्षरब्रह्म क्षर क्षर जैसे अक्षय व अक्षय और क्षर क्षरब्रह्म, ब्रह्म माने प्रभु पुरुष, शर पुरुष कहो शर ब्रह्म कहो उसको ज्योति निरंजन कहो या काल कहो, ये तीन परमात्मा हैं। अब पहले ये देखिएगा फिर उसके बाद आपको परमात्मा की लीला कैसी लीला परमात्मा करता है तो वेद बताएंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। 15 में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये देखिएगा 16, ये 16वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं चर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। इसका क्या अर्थ बनता है? द्वौ माने दो, इमौ लोके इस लोक में, ये पृथ्वी वाला लोक है जो क्षरपुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष का है, इसको पृथ्वी लोक वाला लोक बोलते हैं। इमौ लोके इस लोक में द्वौ माने दो, पुरुषौ माने परमात्मा है, दो प्रभु हैं, एक सर च एक अक्षर, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में सर सर्वाणी भूतानी, सब प्राणी तो नाशवान है, इनके सतुल शरीर नाशवान है, और जीवात्मा सभी के अविनाशी होती है, कुत्ते के सूअर की भी है वो तो। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिए, इस 15वें अध्याय का ये 16वां श्लोक का अनुवाद इन्होंने किया। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने परमात्मा, दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, यहां भी लगा सकते हैं इसको, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। ये क्षर पुरुष यानी दो परमात्मा हैं, और इनमें इनके लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां 17वें में कमाल किया है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु वास्तविक अविनाशी परमात्मा तो इन ऊपर वाले दोनों से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा है, वो परमेश्वर है। अब यहां इसको स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। उत्तम श्रेष्ठ प्रभु यानी वास्तविक परमात्मा तो कोई भगवान कोई और ही है पुरुष, उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है। अब स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कोई और है। फिर यहां गीता पढ़ने वाले श्रद्धालु विचलित हो जाते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर कहा है कि मैं लोक में और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, ये अनुवाद गलत है। इसका ये कहना है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, जितनी आत्माएं हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा रूप में, मैं उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, वो मेरे कंट्रोल में है, और इस कारण से मुझे लोक वेद के आधार पर, लोक वेद होता है सुना सुनाया दंत कथा जो सत्य ना हो, लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो रहा हूं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि वो तो स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। ये खुद तो कहता है मैं तो नाशवान हूं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरा भी उत्पत्ति जन्म मृत्यु होता है। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, 15 के श्लोक नंबर 17 में, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 46 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा कोई और है। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, वो क्या लीला करता है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है कि वो परमात्मा स्वयं ही अपने सतलोक से चलकर आता है। अपने निज स्थान से जहां वो रहता है तीसरे मुक्ति धाम में, वहां से चलकर आता है और अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही प्रचार करता है। उसको एक ऋषि या संत या कवि की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके कविताओं के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है और वो होता है पूर्ण परमात्मा, अमर पुरुष ही होता है। और उस ऋषि द्वारा, ऋषि रूप में प्रगट, संत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा जो ज्ञान होता है वो उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होता है। वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अब सबसे पहले ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का क्या केवल वो श्लोक, वो मंत्र दिखाएंगे आपको जिसमें परमात्मा के बारे में ये पूछा है कि आपका नाम कौन सा है, श्रेष्ठ नाम क्या है आपका, और वो परमात्मा रहता कहाँ है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद बताया गया है। ये तो बाद में देखेंगे, बताएंगे आपको वास्तविकता क्या है, पर अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाना चाहते, जो उद्देश्य उसको पूरा करेंगे। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाषे महर्षि दानंद सरस्वती कृत, कहां से छपा है? ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, इसके 16 नंबर मंत्र में इसमें क्या पूछा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, ये संस्कृत है, सब आयुध है, सतोत्र भी पूयमान है, अभर्ष गुह है, चारों नाम है। तो इस नाम का यहां देखिए, ये भी ब्रैकेट में नाम, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा, ये यहां लिखना चाहिए था जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, आपका जो वास्तविक नाम है उसका ज्ञान कराएं, उसके बारे में बताएं। अगर देखो ये 17वें में इसके बारे में बताया गया है, श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में इसमें लिखा है कि शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीना मरुतो गणेन। ये लिखा है कबीर गिरभी, ये ऊपर आधे रह लगे हैं, ऊपर छोटे रह लगे हैं आधा, कबीर गिरभी कावेना कबीर, इसको कवि है, कवि ही कहो चाहे कबीर कहो, जैसे पुनः पुनः शब्द होता ना, पुनर कहो चाहे पुनः कहो। संत सोमय पवित्र अतेत रेभन, रेभन का अर्थ होता है गरज गरज कर बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। अभी इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम, इसका अर्थ ये बनता है शिक्षी दासा के शिशुम जगानम, वो परमात्मा जानबूझकर अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए प्रकट होता है बालक रूप में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें वो अपनी अपना जो ज्ञान देता है, मरुतः माने वो अच्छी आत्माओं को, गणेन माने समूह के समूह को ज्ञान देता है। कैसे देता है? कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कावेना कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान देता है वो कबीर संत सोम। वो जो कवि रूप में प्रकट होता है इसको कवि मानकर चलते हैं। वो वैसे इसका अर्थ है कबीर देव, वो कबीर साहब, वो कबीर जिसको कवि कहते हैं, क्योंकि लोकोक्तियों के माध्यम से कावेना जो ज्ञान देता, वो कवि रूप में प्रकट परमात्मा, संत सोम, वो संत रूप में जो परमात्मा प्रकट होता है ऋषि रूप में, वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही होता है। सोम माने अमर पुरुष, और वो अपनी अमर वाणी को इन लोक कावेना के माध्यम से पवित्रम अत्यति रेभन, पवित्रता के साथ, अत्यति माने बहुत पवित्रता के साथ, रेभन माने उच्चारण करके गरज गरज के बोलता है। ये देखिएगा रेभन सन, ये रेभन माने गरजता हुआ, स्वयं अनुवाद किए हुए, अभी नहीं का अनुवाद देखते हैं। शिशु सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीश शिशु पर परमात्मा, अब उस परमात्मा को जो ज्ञान माने दो सदा प्रगट है, इनका अर्थ ये जो अत्यंत कमनीय उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और सुभंति उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो इधर उधर चल फिरकर आता है, चलता फिरता रहता है, गणेन गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इसके दो हिस्से कर दिए, कबीर गिरभी के दो अर्थ कर दिए, दो पार्ट कर दिए, कबीर का अर्थ कर दिया कवि लोग कबीर का, और गिरभी का कर दिया वाणी द्वारा। हम यहां लिख दें कि कबीर वाणी द्वारा, नोट इसका अलग ना करें, कबीर गिरभी आगे लिख दें, कबीर वाणी द्वारा, और कविता से कावेना माने कावेना, इसमें लिखा कावेना, ये केवल कावेन लिख रहे, नहीं कावेना, कविताओं द्वारा, कविताओं से यानी कवि रूप में उस स्तुति का, अपने वाणी को कवि रूप में, कावेना माने कविताओं से, यानी कवियों की तरह बोल बोल कर बोलता है वो सोम, सोम है वो अमर पुरुष है जो पवित्र वह परमात्मा, पवित्रम परमात्मा कल्याण अवस्था में, कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन संग्रजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इनको कुछ ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को रामायण कथा का मौखिक ज्ञान ना हो और उसने हिंदी सीख ली हो, विदेश का रहने वाला हो, और वो उस तुलसीकृत रामायण की जो चौपाइयों का अनुवाद करने लगे तो आग अड़ंगा करेगा वो, क्योंकि वो समझ नहीं सकता लंका कौन, रावण कौन था, और तो कुछ भी कुछ का कुछ बकवाद करेगा। यही स्थिति इन अनुवादकर्ताओं की है जो वेदों का अनुवाद कर रहे हैं, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, और सृष्टि रचना का जब तक ज्ञान ना होगा हम सदग्रंथों को कतई नहीं समझ सकते। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जानबूझकर, ज्ञानम जय माने उत्पन्न होना, प्रकट होना, और ज्ञानम माने जानबूझकर, शिशुम जगानम, वो शिशु रूप में परमात्मा प्रकट होती, क्योंकि जैसे शुरुआत जहां से होती है किसी भी सदग्रंथ की, फिर लास्ट में बीच के अध्यायों में उसके कोड वर्ड सांकेतिक शब्द ज्यादा आ जाते हैं, तो इनको वही समझ सकता है जिसको, ये तो श्लोक हैं, ये भी दोहे हैं, एक किस्म के मंत्र जो हैं ये भी श्लोक हैं, ये भी पद्य भाग है, तो इसको इसमें कुछ शब्द अपने गायन राग के अनुसार कुछ शब्दों को ऐसा अधूरा पुधूरा बोला जाता है। तो इसका अर्थ है कि वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर, अपना ज्ञान देने के लिए अपनी सुनियोजित तरीके से, और फिर अपने उस ज्ञान को कविता से बोलता है, और वो कबीर वाणी द्वारा ऊंची स्वर में आवाज करके वो ज्ञान प्रदान करता है, और वो अमर परमात्मा होता है जो जिसको जो कवि कहने लग जाते हैं, क्योंकि वो कविताओं द्वारा अपना ज्ञान देता है, लेकिन वो होता है अमर पुरुष, वो संत रूप में प्रगट, वो अमर पुरुष होता है, जो तत्वदर्शी रूप में प्रकट होता है अपने सतलोक से चलकर आता है। अब 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में और स्पष्ट कर दिया है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 17वां पढ़ लिया, 16वां भी पढ़ लिया कि गरजता हुआ वो बोलता है आवाज लगा। 18वें में लिखा है ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा सहसरणी थ पदवी कवि नाम पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महीस शिष्य शिष्य संत सोम विराजमानो राजति स्तुप इसका यहां अनुवाद किया गया है सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम माने तीसरे धाम में विराजमान है। इसी ने लिखा है इस तृतीयम धाम का अर्थ देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने जो ज्ञान योगी अड़ा दिया ये वही अज्ञान है जो ये ज्ञान को नहीं समझकर ये ज्ञान योगी फंसा दिया कि वो नहीं मानते कि परमात्मा की तब बैठा है इनकी अपनी सोचा वेद कह रहे हैं वो वहां पर विराजमान है और उसको प्रकाश करने वाला है। ये दिन अपना ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला पर वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता ऋषिकृत माने उस ऋषि के द्वारा बोली गई जो ऋषि रूप में प्रकट है उसके द्वारा। अब हमने जो अपना उद्देश्य है ये देखना है कि वो परमात्मा कहीं रहता है और वहां से गति करके आता है सतलोक में रहता है तीसरे लोक में यानी एक लोक तो काल का दूसरा ये एक तो ये सर्वब्रह्म का दूसरा अक्षर ब्रह्म का लोक धाम और तीसरा वो सतलोक से ऊपर का जो सारा अविनाशी स्थल है वो तीसरा मुक्ति धाम कहा जाता है मोक्ष धाम यानी वहां जाने के बाद पूर्ण मोक्ष होता है। तो तीसरे मोक्ष धाम में मुक्ति धाम में विराजमान है वहां परमात्मा रहता है जबकि इन आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद का अपना सोच अपना विधान अपनी सिद्धांत है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है जबकि वेद कहते हैं वो एक देशीय है और वहां रहता है ऊपर के लोक में और वहां से गति करके यहां सह शरीर आता है और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है और वो पुण्य आत्माओं जो श्रेष्ठ अच्छी आत्माएं होती है उनको मिलता है और उनको फिर ये तत्व ज्ञान बताता है फिर वो पूरे संसार में अपने परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को प्रचार करते हैं। अब मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का आपने 18 पढ़ लिया 19 में देखिए 20 में देखते हैं 20 में लिखा है कि वह परमात्मा वो कबीर देव जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ और उच्च स्वर से कनिकरदत्त यानी ऊंचे स्वर में वो ज्ञान देता बोल बोल कर इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है और जैसे कि मरियम मनुष्य जैसे कि मनुष्य मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ सुभर माने अच्छा अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है और इसी प्रकार प्रकृति वह सूर्य को करने के लिए परमात्मा सदैव उदत है, ये इन्होंने अज्ञान कर दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा यहाँ आता है, बहुत से शिष्य बनाता है और वो उनमें ऐसे होता है वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। और फिर जैसे कि कैसे आता वहां से चलकर, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, यानी जैसे कोई मनुष्य सुंदर शरीर धारण करके आता, मनुष्य जैसा परमात्मा है और उसी तरह वो जैसे आकर के यहाँ बहुत से समुदाय का वो नेता होता है, यानी आध्यात्मिक गुरु बनता है। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब आए थे 600 वर्ष पहले, 120 वर्ष की धरातल पर रहे थे, ना उनका कोई जन्म हुआ था, गए तब उनका शरीर नहीं मिला था, सह शरीर गए थे, सह शरीर आए थे, तो उसमें 64 लाख शिष्य थे इस भारतवर्ष के। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की आबादी जनसंख्या मुश्किल से 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, ये सारा एक ही देश था, भारतवर्ष था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सब एक ही था। और उस समय कुल जनसंख्या 4 करोड़ मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ में से 64 लाख से सोना उस परमात्मा के, ये कोई छोटी बात नहीं है। ना उसमें कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा लाउड स्पीकर सिस्टम था, क्योंकि परमात्मा जैसे आजकल मीडिया के ये सैटेलाइट से टीवी चैनलों पर सत्संग चलते हैं, एक व्यक्ति एक स्थान पर बोल रहा है, उसका प्रसारण करोड़ों स्थानों पर हो रहा है, करोड़ों टीवी चल रहे हैं, ऐसे वो परमात्मा अकेला ना जाने कितने जगह प्रकट हो जाते थे उसी शरीर में, और वहां जाकर ज्ञान देते थे, उनको लाभ देते थे, तो फिर परमात्मा के वो शिष्य बन गए थे। तो यहां यही बताया जा रहा है आगे वो परमात्मा क्या लीला करता है। और वो खुद भी कहता है कि चारों युग में हम पुकारे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे ये जग जगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि मैंने चारों युगों में मैं भी आया, सतयुग में परमेश्वर सत्यकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। प्रत्येक युग में उस परमात्मा का एक विशेष नाम चलता है, तो कलयुग में ये परमात्मा का कबीर नाम आखिर तक रहेगा, ये इनका वास्तविक नाम है कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। तो क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, जिनको भगवान आकर मिले, उन्होंने भी परमात्मा का यही गुणगान किया, आवाज लगाई कि कबीर इज गॉड, वो परम अक्षर ब्रह्म कोई और है, वो कबीर है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हेल माने ऊंची आवाज लाकर, गर्द गर्द कर हमने कूक कह, आवाज लगा कर, रुके मार मार कर, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्षे और यो जग चुगता ढेल रे। हीरे माणिक मोती यानी तत्व ज्ञान, मोक्ष तत्व ज्ञान रूपी ये हीरे मोती और कुलालों की वर्षा हो रही है, और ये बोला प्राणी अज्ञानी ऋषियों महर्षियों के द्वारा अज्ञान के आधार से ये डले ढो रहा है, डले इकट्ठे कर रहा है, कंकर पत्थर जोड़ रहा है, आन उपासना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करता है, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, उनको ढेल का है, ढेले यानी डले, वो डले ढो रहा है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का श्लोक नंबर 26-27 इस बात को स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, पहले 96 पढ़ा था, 86 है इसका मंत्र नंबर 26 देखिएगा कितना कमाल है। इसमें अनुवाद बहुत कुछ ठीक किया है इन्होंने। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए अर्थात भक्तों के लिए, साधकों के लिए, जो साधना करते हैं उन साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश करता है, उन दुखों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा इन्होंने क्या कर दिया, कबीर का अर्थ यहां सर्वज्ञ कर दिया। हम यहां लिखते हैं कबीर देव, ये कवि ही मान ले, हम इसको लिखते हैं कबीर देव। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर विद्युत के समान, बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी जैसे आकाशीय बिजली चमक कर मांगी टेढ़ी ऐसे खेल सा करती हुई वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। अपनात्मा जैसे ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1, इसमें यहां स्पष्ट लिखा है, इसका ये स्पष्ट है यहां पर कबीर देव, यो कबीर ऊपर रेला ग्रह नीचे देव, कबीर देव कबीर परमेश्वर, हम इसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव, यो कबीर देव, देव मान परमेश्वर और कबीर माने हम कबीर, हम कबीर बोलने लगे कबीर देव। अब यहां देखो तो यहां हम इसका अर्थ ये लिख देते हैं कबीर देव, इसका क्या भाव बनता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 का, के भक्ति करने वाले साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा उनके सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है। जैसे आप जी कहां कहां से यहां आ रहे हो हैं, और एक यहां बरवाले के बरवाले में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके ऊपर रजा है तो परमात्मा की, आप परमेश्वर की रेंज में आ गए और आपके रास्ते इन्हें खोल दिए, आप यहां आने लगे। और फिर क्या बताता है कि रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, विघ्नों माने उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में जहां परमेश्वर रहते हैं उनका शरीर बहुत तेजों में है, मनुष्य सदृश शरीर है परमेश्वर का, परमक्षर ब्रह्म का, सतपुरुष का, सतपुरुष कहो परमक्षर ब्रह्म को, सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, तो उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी उनकी रोशनी फीकी पड़े उस परमेश्वर के एक रोमकूप की प्रकाश के सामने, तो इतना तेजों में शरीर है उस परमेश्वर का। यदि वो परमात्मा एज इट इज उसी तेजों में शरीर में यहां आ जाए तो हमारे उल्लू की तरह सभी की आंखें बंद हो जाए, हम कुछ नहीं देख सकते। इसलिए वो परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है, अपने रूप को सरल करता हुआ, और वह कबीर परमात्मा जैसे बिजली की तरह कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण क्षण पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के हेत जन अपने के काज, और ऋणक्षिपू जो मार दो में नरसिंह दर के साज। तो एक क्षण में परमात्मा सतलोक से एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में यहां आ जाता है, और वही वेद बता रहे हैं कि वो बिजली जैसे आकाशीय बिजली थी उस समय, बिजली की इस जैसी गति से, बिजली की बहुत ज्यादा स्पीड होती है और तुरंत मालिक की स्पीड तो इससे भी कई लाख करोड़ गुना ज्यादा है, लेकिन एक उदाहरणार्थ बताई जाती है। तो वो परमात्मा क्रीड़ा करता हुआ नीचे आता है, अपनी लीला करता हुआ, और अपने श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब देखना 27वें मंत्र में कितना कमाल किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ दिया 27 देखो, ये अनुवाद वैसे काफी गलत भी किया है उन्होंने, फिर भी प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, जो नाना रूप में सतीथी को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा हरियम परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे स्थान पर प्रकाश रूप है। अब इसमें ये स्पष्ट एक और कर दिया कि वो परमात्मा ऊपर द्यूलोक के, द्यूलोक माने जो बहुत ही चमकीला स्थान है, सतलोक जो है सवर ज्योति रित धामा स्वयं प्रकाशित स्थान है सतलोक, उसको द्यूलोक बोलते हैं कि वो सतलोक के अंदर उस तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर बैठा है। वहां भी प्रत्येक, जैसे यहां एक ब्रह्मांड के दो तीन हिस्से बना रखे हैं, ऐसे ही प्रत्येक लोक सतलोक के भी ऊपर दो तीन हिस्से बना रखे हैं, तीन हिस्से। तो ऐसे ही वो परमात्मा उसमें भी तीसरे स्थान पर, जैसे यहां से तो तीसरा लोक सतलोक हो गया, सतलोक के अंदर भी तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर उसके पर विराजमान है वो परमात्मा, वहां रहता है, एक देशीय है। अब जबकि ये वेदों को सत मानने वाले महर्षि दानंद और उसके अनुयायी आचार्य ये कहते हैं परमात्मा एक देशीय नहीं है, जबकि वेदों को सत्य भी मानते हैं। जब वेद कह रहे हैं वो तो एक स्थान पर रहता है, ये कहते हैं भगवान कहीं नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, वो तो एक स्थान पर नहीं रहता। इससे सिद्ध है कि इनका सिद्धांत मनगढ़ंत है, वेद विरुद्ध है, जो बिल्कुल गलत है इस महर्षि सिद्धांत का। और वेद सही है, वेद सही है तो उसका ज्ञान अपना गलत है। वेद तो कहते हैं वो एक स्थान पर विराजमान है, वो ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 ये यहां पर है। ये इसमें कमाल कर दिया, साकार परमात्मा बताया है, जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, यानी पाप नाशक है, पाप अक्षमा करता है, करने वाला है, वह राजा के समान, इन्हीं के शब्दों अनुवाद है, वह राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय माने देखने योग्य साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को, ओए होए, वह परमात्मा वर्णीय पुरुषों को, जो साकार परमात्मा है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं, जो उनके श्रेष्ठ भक्त हैं, उसको पवित्र, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अब इसका स्पष्ट अर्थ बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां राजा की तरह देखने योग्य है, देखा जाता है, और वह वहां से चलकर गतिशील होकर के नीचे आता है, वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ उनको आकर मिलता है, प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली अपने पात्र पर ही गिरती है, जैसे पहले कहा करते थे, अभी यही विधान है, आकाशीय बिजली जैसे काशी एक धातु होती थी, पहले तो काशी के बेले, कटोरे, थाली, गिलास ये सारे हुआ करते थे, और कई बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी कि वो थाली या बेला बाहर पड़ा होता या घर में होता कहीं पर, तो वो बिजली आकाशीय बिजली उस बेले या थाली पर गिरती और उसको पाड़ देती, खत्म कर देती और नीचे धरती में समा जाती, या काले सांप पर गिरती। तो कहते हैं वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जैसे बिजली अपने स्नेह वाले जिसका उससे लगाव है, जिससे उसका लिंक है, उसी पर आकर पड़ती है। तो ऐसे ही वो परमात्मा अपने प्यारी दृढ़ भक्तों को, दोस्त की प्यारी आत्मा है, उनको आकर ऐसे मिलता है, तुरंत आ जाता है वहां पर और फिर उनको अपना साक्षात्कार करा के सतलोक आदि दिखा करके अपने प्रचार करने के लिए उनको छोड़ देता है। वो ऐसी लीला करता है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। आगे देखिए, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसका मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप किस लिए आता हो? परमात्मा तत्व ज्ञान देने के लिए, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली की तरह के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। अति गतिशील पदार्थ की तरह, यानी बहुत तेज चाल से चलने वाले पदार्थ की तरह यहां आते हो। आप सर्वज्ञ हैं, यहां लिखना है आप ये कबीर वेदस्या, कबीर माने आप कबीर देव हैं, इनकी हम व्याकरण को नहीं छेड़ना चाहते, आप कबीर देव हैं, यहां लिख दे आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर पुरुष, सो माने हे अमर पुरुष, आप हमको सुख दें, ऐसे ऐसे। अच्छा, अब तीसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए, यानी लोक लोकांतरों में चलते हुए आप सर्व आते हो, आप सर्वव्यापक नहीं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी वहां से चलकर आते हो और यहाँ स्वयं गतिशील होकर के यहाँ आते हो, यानी एक स्थान पर भगवान रहता है ऊपर और वहां से चलकर आता है, वो शरीर है, मनुष्य सदृश है, राजा की तरह देखने योग्य है और यहाँ आता है और में मिलता है। वो किस उद्देश्य के लिए आता है ये भी देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 का प्रथम ही मंत्र है, इसमें कबीर देव लिखा, कबीर देव, इन्होंने इसका अड़ंगा करना ही था क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, वो अलग से अनुवाद कुछ गलत किया। यहां देखो, वह परमात्मा कबीर, कबीर नहीं, हम इसको बोल दें कबीर देव है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। वो आता ही उद्देश्य ये होता है कि वो तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करता है, ज्ञान देता है और सहनशील है। कबीर जी के साथ ना जाने कितने जुल्म किए थे पर उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, क्योंकि संतों, भगवान का संग्राम जीव के साथ नहीं, ज्ञान अज्ञान के साथ होता है, वो ज्ञान रूपी संग्राम में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 में आपने पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान रूपी आयुध के, आयुध, आयुध माने शस्त्र को लेकर प्रकट होता है और वो परमात्मा आप उसी तरह आइए और अपने यथार्थ नाम को, उस श्रेष्ठ नाम को, गुप्त नाम को हमें बताइए, आपका कौन सा गुप्त मंत्र है और वास्तविक नाम के है आपका। अब परमात्मा भी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब वो गुप्त नाम जो है इस दास को दिया है, प्रभु ने आदेश दिया इसका प्रकट करने का, वो आज तक किसी को प्रकट नहीं किया था, लेकिन जिन महापुरुषों को उन्होंने दिया था बताया था उनको आगे देने का आदेश नहीं दिया था कि तुम इसको अभी खोलना नहीं है। तो सार नाम यश दास के पास है। इसका एक प्रमाण और है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 31। ब्रह्म माने ब्रह्म शब्द का आधार परमात्मा, शब्द ब्रह्म का आधार परमात्मा वर्णीय उपासकों को श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ उपासकों को भली भांति प्राप्त होता है। भली भांति प्राप्त होता, जो परमात्मा बलों का दाता है वह सबको सब सत्ता में लीन करने वाला परमात्मा, ये अनुवाद थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। सहरी, सहरी माने वह है पाप नाशक, ये लिखना चाहिए था। अवचक्रत शब्दमान होता है, उपासक लोग उसको उपासना से मगन हुए भली भांति उसकी स्तुति करते हैं। उस शब्द ब्रह्म के आदि कारण ब्रह्म को जो शिशुम सबका लक्ष्य स्थान है उसको सुमति लोग साक्षात्कार करते हैं। ये गलत किया उन्होंने। शिशु माने अर्थ क्या है, बालक रूप में। इसका अर्थ ये बनता है कि वह बालक रूप में प्रगट होता है, वह बालक रूप में प्रगट होता है वो परमात्मा और सबको ज्ञान देता है। अपने आत्मा परमात्मा कौन है, कैसा है और वो क्या करता है, ये परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है जो उसके दृढ़ भक्त होते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, दादू दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, इन अपने दृढ़ भक्तों को परमात्मा ऐसे ही आकर अचानक मिले और उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराया, अपना साक्षात्कार कराया, सतलोक में लेकर गए, सचखंड में। अभी तक जितने भी पंथ हैं वैसे तो सतलोक के ठेकेदार ये एक पंथ है राधा स्वामी, ये सतलोक का ठेका लिए हुए है कि हम सतलोक के विषय में जानकारी रखते हैं, सतपुरुष की भी जानकारी हमें ही है और हमारे जो मंत्र हैं, जो साधना है वो ही श्रेष्ठ है। अपने आत्मा वो कौन कौन से हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ से ही अलग हुआ है, धन धन सतगुरु यानी सच्चा सौदा सिरसा, ये एक ही कुएं का पानी है। शिवदयाल जी महाराज हुए हैं आगरा में पन्नी गली में, वहां से ये पंथ चला है और राधा स्वामी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसी से एक जयमल सिंह नामक एक महान आत्मा उन शिवदयाल जी से उपदेशी होकर के बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे ब्यास ग्राम के पास वहां अपना अलग डेरा बना लिया। फिर उससे ये अलग दलग फटे हैं, जैसे दन दन सतगुरु सरसा वाला और जगमाल वाली वाला, और उन्हीं राधा स्वामी पंथ से ही आगरा से निकला हुआ है एक घोरे लाल जी थे, वो भी आगरा से संबंधित राधा स्वामी पंथ से घोरे लाल जी, उनके शिष्य हुए हैं ये जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव जो पंथ बनाया उन्होंने उसको जय गुरुदेव, वो सब एक ही जैसा उनका क्रियाएं हैं, एक जैसा नाम है। ये पांचों नाम काल के हैं, ये पांच नाम देते हैं ओंकार रंकार ज्योति ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब घट रामायण के अंदर, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले जो महात्मा हुए हैं उनके शिष्य थे शिवदयाल जी महाराज के माता पिता और शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी उस महात्मा की आदर्श वाले तुलसीदास जी की बहुत ज्यादा संगत की थी, यानी उसकी ज्ञान को ग्रहण किया था। अब तुलसीदास जी हाथरस वाले कहते हैं कि ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम काल के हैं। कौन कौन से? ओंकार, ररंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 500 नाम काल के। ये देखिएगा घट रामायण, तुलसी साहेब हाथरस वाले की, भाग एक, बेल विडियर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। यह घट रामायण भाग एक, इसके 27 नंबर पृष्ठ को आप पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब ये क्या कहते हैं और ये क्या बोल रहे हैं, प्रश्न नंबर 27 पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रख्या। इन पांचों से एक और नाम है छठा, वो गुप्त है। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राये पांच बखानी। काल ने पांचों नाम बोले थे। जीव नाम निज कह विचारी और जान बूझ दानी झकमारी। आगे आइए, कहे जीव दृग ज्ञानी भाई, दृग माने किला, कहे जीव दृग ज्ञानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तुम पाई, के ही कर अंश कहां तुम जाई, बात आपनो कहो बुझाई, कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा, दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई, कौन नाम मार्ग को जाई, कौन नाम से उभरे आई, इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। आगे देखिए, दानी सुन विधि बात हमारी, जीव बोलता है जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी, और सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, आदि नाम। आगे देखिए है, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी।